ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांतिवन के पावन मन भावन परिसर में योग तपस्या भट्टी में आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। सभी बातों से फारिग होकर खास योग तपस्या के लिए समय निकालकर आप सभी आए हैं। बाबा मिलन के कार्यक्रम में एक साथ बड़ी संख्या में आने नहीं देते हैं, इसलिए भट्टियों के ग्रुप बनाए गए जिसमें आप सभी पधारे हैं। बाबा का घर, बेहद का घर हम बच्चों के लिए बैटरी चार्ज करने का घर है। हमेशा बाबा कहते हैं आओ और रिफ्रेश होकर जाओ। हमारा लक्ष्य और दुनिया का वातावरण भिन्न है। दुनिया नहीं जानती है कि कौन आया हुआ है, ये कौन सा समय चल रहा है, और वो हमें क्या कह रहा है। दुनिया तो अज्ञान अंधेरे में है, देहाभिमान में है, विकारों में डुबके लगाते रहते हैं, उनका जीवन सांसारिक है, भौतिक है। तो वहां हमें लोगों से, वातावरण से मदद नहीं मिलती है। ये बाबा की एक अनोखी दुनिया है। यहां हम बाबा जो लक्ष्य देते हैं आत्मभिमानी बनो, फरिश्ता बनो, कर्मातीत बनो, इस लक्ष्य की दिशा में जाने में हमें मदद मिलती है। ये भूमि तपोभूमि है, वरदानी भूमि है। हमारी दादियों की, बड़ों की, बाबा की, मम्मा की तपस्या भूमि है। सिर्फ शांतिवन की बात करें तो भी लगभग 23-24 वर्ष होने आएंगे जो प्रति वर्ष हजारों भाई बहने हर टर्न में एवरेज 15-20 हजार भाई बहने आते रहे हैं और बाप दादा से मिलन मनाते रहे। आप में से भी जो अव्यक्त बाप दादा से मिले हैं वो हाथ ऊपर करें। जो यहाँ डायमंड हॉल में बहुत अच्छा, देश विदेश के हजारों, कुल मिलाकर लाखों भाई बहने प्रतिवर्ष यहाँ आते रहे हैं, बाबा से मिलन मनाते रहे हैं, ज्ञान योग की गहराई में जाते रहे हैं और हमारी तपस्वी मुरत दादियों की पालना लेते रहे हैं, तो वो वाइब्रेशंस है। वायुमंडल का यहाँ हमें मदद मिलती है, क्योंकि जो यहाँ रहते हैं या सेवा में आते हैं या जो भी बाबा के बच्चे यहाँ आते हैं, मेहमान भी आते थे, वो भी ज्ञान योग के लक्ष्य से ही आते हैं। तो यहाँ कोई भौतिक बातें नहीं है, सांसारिक बातें नहीं है, लौकिक बातें नहीं है। यहाँ हमें बुलाया जाता है और हम सब भी आपस में मिलते हैं वो स्व उन्नति के लक्ष्य से। तो वो वायुमंडल हमें मिलता है। बाबा कहते हैं ना कि गेट के बाहर माया खड़ी है, गेट के अंदर आते हैं तो बाबा की दुनिया है। हम सभी ने अपने आप को पहचान लिया है और हम सब ने बाबा के सत्य ज्ञान को स्वीकार कर जीवन का निर्णय ले लिया है कि अब ये मेरा अंतिम जन्म पवित्र जीवन, योगी जीवन के लिए है। सबका निर्णय निर्णय किया है। ज्ञान नहीं था, विकारों में डुबके लगाते रहते थे, पर जब स्वयं भगवान मिले, अनेक जन्मों की भक्ति का फल ये ज्ञान मिला, तो हमें अपवित्रता, असत्यता, अयथार्थता से वैराग्य है कि ये संगम युग का समय है, महापरिवर्तन की वेला है और इस महापरिवर्तन की वेला के समय बाबा आकर हमें पावन बनाते हैं, योगी बनाते हैं। तो अब मेरा जीवन योगी जीवन, भल घर में रहते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, पर हम सबने ये निर्णय कर लिया है भोग मार्ग को छोड़ योग मार्ग को अपनाया है। ये निशानी है कि हम सभी देवी देवता धर्म की आत्माएं। बाबा कहते जो इस धर्म की आत्मा है उनकी बुद्धि में ही ज्ञान बैठे, औरों को समझ में आएगा नहीं। हमें बाबा के ज्ञान की हर बात समझ में आती है, स्वीकार होती है। हमारे इस पवित्र ब्राह्मण जीवन की हर नियम मर्यादा हमें सहज स्वीकार हुई है, हमें मुश्किल नहीं लगते, है ना? ऐसा ऐसा है हा? हमें महसूस होता है कि अब जीवन सही बना, अब हम सही मार्ग पर आ गए। संसार की सबसे ऊंची पवित्रता की धारणा हमारे जीवन में, जब तक पवित्र नहीं ब्राह्मण नहीं कह सकते। भले हम रोज ज्ञान सुनते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं, पर बाबा के सच्चे और पक्के ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तब कहे जाते हैं जब ब्रह्मचर्य की पालना करते। पवित्रता हमारे जीवन का फाउंडेशन है। दुनिया सोच भी नहीं सकती, पवित्रता की बात पर आकर सभी अटक गए। हर धर्म संप्रदाय मठ पंथ, हर साधु संत गुरु सन्यासी बाकी सब बातें सिखाते हैं, दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सत्य बोलो, मीठा बोलो, बाकी सब बात सिखाते हैं, पर पवित्रता की बात कोई नहीं सिखा सकता। वो खुद घर बार छोड़कर पवित्र रहते हैं तो घर गृहस्थ में रहने वालों को पवित्रता की बात वो सिखा नहीं पाते। पवित्रता की धारणा जिसके लिए स्वयं भगवान सृष्टि पर आते हैं, उस पवित्रता के बारे में दुनिया सोच भी नहीं पाती। आज बाबा के साधारण बच्चे शरीर से साधारण है, परंतु घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहते। बहुत शुरू में आज से 40-50 साल पहले याद है हमें शोभा यात्रा निकालते थे, हम ये नारा बोलते थे कि मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। इसमें पुराने होंगे उनको पता होगा, शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग अर्थात सतयुग बाबा स्थापन करते हैं, और उसके लिए संगम युग में हमें पवित्र बनाते हैं। काम वासना मन को चंचल बनाती है, सदा पावन बाबा से योग लगाना है तो मुझ आत्मा को भी पवित्र बनना है। बिना पवित्रता योग नहीं लग सकता है। और ये बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति है। प्रथम पाठ से ही, जैसे ही आत्मा का ज्ञान मिला, हमारी वृत्ति दृष्टि बदल गई। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि बन गई। अब हम देह दृष्टि से नहीं देखते हैं। आत्मा में जागृति आ गई। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। सभी व्यक्ति एक आत्मा है। हम एक बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा, भाई भाई। आत्मिक वृत्ति, रूहानी दृष्टि हमारी बन गई। पवित्रता की इतनी ऊंची मंजिल बाबा के बच्चों ने सर कर ली। सभी महान आत्माएं हम रोज अमृत वेले उठकर बाबा से मिलन मनाते। इतना ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना और बाबा को प्यार से याद करना, ये भी बहुत ऊंची धारणा है। आज तो सारी दुनिया रात को देरी से सोना, सुबह देरी से उठना। जब यहाँ नए लोग आते हैं, ये तो 2 साल से कोरोना के कारण प्रोग्राम बंद है। इतने साल कितने मेहमान प्रोग्रामों में आते रहे, है ना, विंग्स के प्रोग्राम, शिविरों के प्रोग्राम, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के प्रोग्राम, लाखों मेहमान आते रहे। जब हम उनको अमृत वेले से दिनचर्या शुरू होती है ये बताते, तो लोगों को बड़ा कहते, अच्छा आधी रात से ही उठ जाना है। कि वे 3:30 बजे उठने का गीत बजेगा तो उनको बड़ा वंडर लगता था कि अच्छा आधी रात से ही उठ जाने। और आज बाबा के बच्चों की वो रोज की दिनचर्या है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ बन गया तो दिनचर्या भी बदल गई। एक दिन भी नहीं उठते हैं तो दिल खाता है, अच्छा नहीं लगता है। रोज अमृत वेले उठते हैं, दिल की हर बात बाबा से करते। और मुरली में देखो बाबा जवाब देते हैं हर बात का, ये भी बहुत ऊंची धारणा है जो आप सभी ने अपने जीवन में की है। दिन उगते ही फिर हम बिजी हो जाते हैं अपने नौकरी धंधों में। अमृत वेला हम दिल से बाबा को याद करें। हम रोज सुबह का मुरली क्लास करते हैं। ये जो शास्त्रों में गायन है कि भगवान रोज सुबह अकल बांटने आते हैं, वो कौन सी बात है? संगम युग की बात है। संगम युग में भगवान रोज सुबह जो मुरली सुनाते हैं वो क्या है? अकल ही तो बांटते हैं। हर बात बाबा समझाते हैं, सुनाते नहीं है सिर्फ। बाबा की मुरली में क्या आता है? बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। यहां सिर्फ सुनाने की बातें नहीं है, ये कोई कथा कहानियां नहीं है। भगवान रोज ब्रह्मा मुख से सत्वचन उच्चारण करते हैं। सद ज्ञान से ही तो सद्बुद्धि मिलती है। गलत बातें करके बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। उनको ऐसी ऐसी बातें सुनाई, उनकी बुद्धि भरमा गई। बाबा करके सत्य ज्ञान देकर हमें सद्बुद्धि देते। सबका अनुभव है, साकार मुरलियों के माध्यम से हमारे प्रैक्टिकल जीवन की छोटी मोटी हर बात बाबा हमें समझाते। हमारे चारों ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट का विस्तार से और गहराई से बाबा समझ हमें। कैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, देखना, बोलना, सोचना, सुनना, खाना, पीना, पहनना, हर बात बाबा हमें सिखाते। ये रोज बाबा हमें अकल देते हैं। इसलिए लक्ष्य रखते हैं सभी, जहां तक हो सके हमें रोज सुबह मुरली क्लास करना। लोग सोचते हैं पता नहीं ये कब तक जाते रहेंगे, है ना? वे सोमवार शिव के मंदिर में चले गए, कभी गुरुवार को गए, कोई शनिवार को गए, पर रोज क्लास करना ये भी बहुत ऊंची धारणा है। हम प्रैक्टिकल बन रहे हैं, सिर्फ बातें नहीं है। जब हम कहते हैं ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, हम रोज पढ़ते हैं, गॉडली स्टूडेंट बनते हैं, रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सुनाने वाली आत्माएं हैं, पर सुन क्या रहे हैं? भगवान उवाच, सत्वचन हम रोज सुनते हैं। शुद्ध अन्न खाते हैं, पावन बनना माना हर बात में पावन बनना है। हमारा आहार विहार शुद्ध, क्योंकि अन्न भी मन पर असर करता है, तो अन्न शुद्धि भी बहुत जरूरी है। भक्ति में भी इस बात को समझा गया तब तो व्रत उपवास की बातें निकली। व्रत उपवास करने का लक्ष्य तो यही था ना कि खाने पीने के रस और स्वाद से बुद्धि निकले, और वो इतना समय मन और बुद्धि परमात्मा को याद करें। ये अलग बात है कि लोगों ने फिर वही खाने पीने के रस और स्वाद में ही आ गए, ये नहीं खाना ये नहीं खाना, तो क्या क्या खाना ढूंढ निकाला, कितना फराली चीजें बनाते हैं। तो वो लक्ष्य तो वहां नहीं रहा, पर बाबा ने हमें अन्न शुद्धि की धारणा करवाई। आज हम सभी शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन खुद बनाते हैं और बाबा की याद में स्वीकार करते, बाबा को भोग लगाते। ये बाबा का भंडार है, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं फिर खाते। ये एक अपने आप पर कंट्रोल है, जो स्वादेंद्रिय पर विजय प्राप्त करते हैं वो ही विकारों पर विजय बन सकते हैं। आज से 53 वर्ष पूर्व हम बाबा के ज्ञान में आए, 14 वर्ष की आयु में माँ बाप ज्ञान में आए, तो हम बच्चे भी सबको रोज ज्ञान देते थे। याद है उस समय गृहस्थी लोगों के जीवन भी बहुत नियम संयम वाले, इतनी दृष्टि वृत्ति की बातें नहीं थी। भोजन में मिलावट बनावट नहीं थी। इतना वर्षों पूर्व से बाबा ने क्यों अन्न शुद्धि की धारणाएं कराई, आज समझ में आता है कि आज दुनिया कितनी पतित विकारी बन गई, हर बात में भ्रष्टता आ गई। पर बरसों से जो बाबा ने धारणा कराई, आज संसार में कितनी चीजें वैभव पदार्थ निकले पर हमें कोई आकर्षण नहीं होता। बाबा ने हम बच्चों को तैयार कर दी, तो ब्राह्मण जीवन के ये सारे नियम मर्यादाएं धारणाएं जो हम सब ने अपने जीवन में धारण की हैं, हम योगी स्थिति के लिए तैयार हो गए। योगी को कमल पुष्प पर दिखाते थे, देवता बनना माना, हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल बना। हर हस्त कमल चरण कमल नयन कमल मुख कमल, देवताओं की हर कर्मेंद्रिय की तुलना कमल पुष्प से की जाती कि हमें कर्मेंद्रिय से कर्म करना है लेकिन विकारों से अलिप्त रहना है, शुद्ध कर्म करना है, हर कर्म को हमें श्रेष्ठ बनाना। अब पवित्रता के कमल आसन पर हम विराजमान है। अब हमें मन और बुद्धि एक बाबा की याद में लगाना है, श्रीमत पर हमें चलना है। तो हम अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हर कर्म को सत्य कर्म हम बना सकते और ये सत्कर्म ही सदाकाल के सुख शांति आनंद समृद्धि प्राप्त करने का आधार है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए बिगर हम अपनी गति सदगति नहीं कर सकते, ये तो हम सबको स्पष्ट है। कोई मनुष्य मनुष्य की गति सदगति नहीं कर सकता। बाबा जो श्रीमत देते हैं उन श्रीमत पर किए हुए हर कर्म से हम अपने जीवन की नैया को पार कर सकते हैं। हम कलयुग से निकल चुके हैं, भल हम कलयुगी दुनिया के बीच रहते हैं पर हम कमल फूल है, अलिप्त रहे। कलयुग से निकल संगम की दुनिया में हम आ गए, इसलिए बाबा कहते हैं याद रखो हम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मणात्माएं। कलयुग से हम निकल चुके हैं, अब हमें मुड़ कर देखना भी नहीं है। जिस गली को छोड़ दिया उस कलयुगी दुनिया में इंटरेस्ट नहीं लेना है, वो हमारी दिशा नहीं। हमारी यात्रा है अब संगम युग से सतयुग की ओर। अब हमारी हर क्षण सतयुग की ओर यात्रा है, कलयुग से निकल चुके, नया ब्राह्मण जन्म हो चुका है। अब हमारे में कोई शुद्रपन पतितपन नहीं, हमें तो अब सतयुग की ओर आगे बढ़ना है। एक दिन संगम युग का पूरा हुआ, हम एक दिन और सतयुग के नजदीक गए। परिवर्तन तो कलयुग से सतयुग की ओर हो रहा है, इसलिए हम नित्य ज्ञान युग का पुरुषार्थ करते हैं। जब तक संपूर्ण पावन न बने, पूरा सतो प्रधान न बने, हमारा पुरुषार्थ सदा चलता रहे। थकते तो नहीं हो ना? बाबा कहते थकते तो भक्ति में हैं, भटकते हैं। कोई व्यर्थ का भटकेगा तो थकेगा। बाबा ने भटकने से छुड़ा दिया, अब तो हमें सत्य ज्ञान मिल गया। अब हर कदम हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी मंजिल है ब्रह्मचर्य से शुरुआत की है, हमारी मंजिल है संपूर्ण निर्विकारी बनना। देवता बनना माना क्या बनना है? क्लियर है ना बुद्धि में? देवता बनना माना प्रैक्टिकल क्या बनना है? देवताओं की महिमा क्या गाते हो? मुरली में आता है ना, देवताओं का गायन क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। देवता बनना माना प्रैक्टिकल ये बनना। बनना संगम युग में है ना, तो 21 जन्म आधा कल्प देवताई प्रारब्ध भोगेंगे, तो उसके लायक अभी बनना है। योगी बनना माना योग्य बनना, सतयुगी दुनिया के लायक बनना। बाबा हमें बना रहे हैं, हम बनेंगे अपने आप सतयुग के लायक, दुनिया भी बदल जाएगी। तो हमारा लक्ष्य है कि अब हमारे अंदर विकार का कोई अंश न रहे। है सबका लक्ष्य कि थोड़े बहुत विकार रहे चलेगा? नहीं, विकार माना विकार, वो तो आत्मा को भ्रष्ट बनाने वाले हैं। तो ये लक्ष्य रोज पक्का करो। बाबा के सामने बैठते हैं ना रोज, लक्ष्य पक्का करो। हमें सच में देवता बनना है, सिर्फ बातें नहीं करनी। बाबा कहते हैं वो तो कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग सीधा रहा, वो तो सिर्फ बातें हैं। प्रैक्टिकल संगम युग में बाबा हम बच्चों को आप समान संपन्न और संपूर्ण बना रहे। तो मुझे रोज इस लक्ष्य को पक्का करना है। वहां तो देखो रोज क्लास करते हैं और फिर भागते हैं, है ना? वहां तो टाइम ही नहीं, आपको फुर्सत नहीं, नौकरी जाना, धंधे में जाना, खेती में जाना, माताएं भी भागती है मुरली क्लास के बाद, दीदी सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, परिवार वालों को नौकरी धंधे पर जाना, तो पूरी घर की सारी व्यवस्था संभालना, तो भागते हैं ना? इसलिए बाबा ने भट्टियों का प्रोग्राम बनाते कि टाइम निकाल के आओ, यहां आराम से रहो, न भोजन बनाना, न नौकरी पर जाना, यहां समय निकाल कर आप आए हैं ताकि शांति से हम अपने आप पर अटेंशन दे सके, हम खुद पर गौर कर सके कि हमारा जो लक्ष्य है हम ऐसा कहां तक बने हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, कैसे अपने आप को भरपूर संपन्न संपूर्ण बनाना है। भक्ति में भी जानते थे ना कि भगवान जब देते हैं तो कैसा देते हैं, हाँ, छप्पर फाड़ कर देते हैं, जानते हो ना सभी, हाँ? अब समझ में आया कि छप्पर फाड़ के देना माना बेहद का वर्षा देते, जब देते हैं माना, कब देते हैं, संगम युग में देते हैं, संगम युग में वो खुद आते हैं और बेहद का वर्षा देते हैं। एक संगम युग का, एक जन्म का पुरुषार्थ और 21 जन्मों की प्रारब्ध बाबा देते हैं। ये छप्पर फाड़ के देते हैं। हमें थोड़े में राजी नहीं होना है, वे चलो पवित्र रहते हैं, रोज ज्ञान योग करते हैं, सेवा करते हैं, बाबा के साथी मददगार बनते हैं, कहीं इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं, पर नहीं, हमें पूरा लक्ष्य प्राप्त करना है, पूरी प्राप्ति करनी है। फिर ड्रामा में और कोई युग में और कोई जन्म में ये भाग्य नहीं मिलना है, ये संगम युग का समय खुद भगवान हमें पावन बनाते हैं। मुरली में देखते हो ना बाबा को हमें पावन बनाने का कितना उमंग उत्साह है, हमें पावन बनने की इतनी उत्कंठा है, भगवान हमें पावन बनाने के लिए कितना हिम्मत उमंग उत्साह निश्चय नशा करवाते, हमें पावन बनने की उत्कंठा है, हमारे में भी वो उमंग उत्साह हमें रख, हर दिव्य गुण हमें धारण करना है, कोई एक भी गुण की कमी है, देखो सबको ध्यान में आ जाती है, इतनी ऊंची धारणाएं हम सबने की, वो बात नहीं, पर हमारी छोटी मोटी कमजोरी होगी तो लौकिक परिवार वाले भी कहेंगे, वहां जाते हैं रोज और गुस्सा करते हो, बच्चे भी कहेंगे मैं दीदी को बता दूंगा आप गुस्सा करते हाँ? आप ओम शांति वाले आप झूठ क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, पर चिंतन क्यों करते हैं, इतनी उच्च धारणाएं जो की है, जो मैंने आप सबको बताई, वो नहीं दिखाई देती, जो कमी है वो ही दिखाई देता है। तो हम भी अपने आप में सोचते हैं ना, आप भी सोचते होंगे, महसूस करते होंगे कि इतनी त्याग तपस्या वैराग्य की धारणा के बाद भी हमारी कमी कमजोरियां ही दिखाई देती हैं, तो हम ये कमजोरियां क्यों रखें, क्यों रखें, क्यों नहीं हम ये परिवर्तन करते। बाबा के ज्ञान योग में वो शक्ति है, आधा कल्प भक्ति करने के बाद भी जो धारणाएं नहीं हुई, वो धारणाएं बाबा के ज्ञान योग की शक्ति से हम सबने की, ये सत्य की शक्ति है, ये परमात्मा ज्ञान की शक्ति है। उस ज्ञान और योग से ये छोटी मोटी कमजोरियां भी क्यों नहीं हम बदल दें। सिर्फ निश्चय कर लेना है, सिर्फ दृढ़ता करना है, तो शांति से यहां बैठेंगे। बाबा का बहुत बड़ा घर है, बहुत सुंदर बगीचे हैं, कितने पवित्र स्थान बने हुए हैं आप देखिए। अब तो हमारी दादी प्रकाशमणि जी का यादगार, दादी जानकी जी का यादगार, दादी गुलजार जी, हमारे अव्यक्त बाप दादा की रथ, उसका यादगार, तपस्या धाम, बाबा का कमरा, ये चार पांच धाम तो यहां ही बन गए। ये स्थान है जहां हम साइलेंस में बैठे और अपने आप को देखें कि हम योगी तपस्वी क्यों नहीं अनुभव आते हैं, कौन सी कमियां हैं जो अभी भी हम साधारण मनुष्य दिखते हैं। देखो अपने आप, प्यारे बाप दादा ने 50 वर्ष, चलो 69 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, 50 वर्ष हो गए, 50 वर्षों बाबा ने हमें अव्यक्त पालना दी। अव्यक्त मुरली में संपूर्ण बनने की हर बात बाबा ने सिखाई। हम ब्राह्मण से फरिश्ता, संपूर्ण कर्मातीत, संपूर्ण बनने की हर बातें बाबा ने हमें बताई। आज भी बाबा की अव्यक्त मुरली सुनी ना सबने, मोबाइल में आती है ना सबको, ट्रेन में थे पर मुरली सुनी कि नहीं सुनी, सुनी ना, पढ़ी ना। बाबा ने कहा ना, कौन सा अभ्यास बहुत काल का चाहिए, न्यारा और प्यारा बने, बस बाबा कहते आना और जाना। वापस घर जाना है और नई दुनिया में आना है। और शरीरीपन का, न्यारा और प्यारापन का प्रैक्टिस करो बाबा ने कहा, तो साइलेंस में रहकर अपने आप को देखना है, बाबा से बात करनी है, जो मुझ आत्मा में रही सही कमी कमजोरी है मुझे खत्म करना है। थोड़ा भी डिफेक्ट रह जाता है तो वो सेकेंड हैंड माल हो जाता है, पता है ना, पूरा कपड़े का ताकिया अच्छा है पर थोड़ा भी डिफेक्ट है तो सेकेंड हैंड माल हो जाता है, क्वालिटी डाउन हो जाती, कम दाम मिलते हैं। थोड़ी भी कमजोरी आत्मा को चंद्रवंशी बना देती, सेकेंड ग्रेड माल हो जाते हैं, हमें तो फर्स्ट क्लास A1 क्वालिटी बनना है ना, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना है और ऐसा ही पुरुषार्थ। तो देखो क्या कमजोरियां हैं, कहां हमारी रूहानियत खत्म हो जाती। पुरुषार्थ तो रोज कर रहे हैं, सत्य ज्ञान है, डायरेक्ट भगवान से योग है, पवित्रता की धारणा है, जब से बाबा के बने हैं हम दिल से मन वचन कर्म से तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर भी मुझ आत्मा में स्थिति क्यों नहीं है। ये रही सही कमजोरियां खत्म कर, अपने आप को कंप्लीट भरपूर करना है, संपन्न बनाना है। हर गुण हर शक्ति ज्ञान का हर सत्य मुझे जीवन में धारण करना है। हमें एग्जाम्पल बनना है। देखो हम लोग ज्ञान देते हैं तो लोग हमें कहते हैं ना कि बहन जी आप तो सेंटर में रहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो कहते हैं ना हम तो गृहस्थी में रहते हैं हम कैसे करेंगे, तो हम किसका एग्जाम्पल देते, आप सबका एग्जाम्पल देते हैं कि देखो हमारे ये लाखों भाई बहने हैं, वो भी अपना नौकरी धंधा करते हैं, घर परिवार में रहते हैं, वो भी पवित्र और योगी हैं, तो हम आपका ही एग्जाम्पल बताते हैं। तो जब हम ऐसे एग्जाम्पल बने हैं तो क्यों हम कोई कमजोरियां रखें। तो ये दृढ़ता करो, बाबा कहते हैं ना भट्टी किस लिए करते हैं, कहते हैं ना भाई सोने को आग की भट्टी में डालते हैं सोने को शुद्ध बनाने के लिए, जो मिलावट है अशुद्धि निकल जाए। धोबी भी कपड़ों की भट्टी चढ़ाते हैं कि जो मैलापन दाग है वो निकल जाएं। ईंटे कच्ची चढ़ाते हैं भट्ठे में पकाने के लिए, और जब पक जाते हैं तो वो कपड़े भी साफ चमकने लगते, वो सोना भी शुद्ध चमकने लगता है, ईंटें भी पक कर कितनी शक्तिशाली बन जाती है। तो भट्ठी किस लिए है? योग तपस्या भट्ठी किस लिए है? ताकि हमारे अंदर रही सही अशुद्धि निकल जाए और हम शक्तिशाली बन जाए। एक ईंट भी कच्ची रहेगी तो वो किला, वो दीवार, वो मकान कमजोर बनेगा। हम तो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, हम भगवान के साथी मददगार हैं। ऐसा नहीं सोचो कि मैं एक कमजोर रहूंगा तो क्या हो जाएगा, नहीं। एक भी कमजोर रहेगा तो वो पूरी चीज कमजोर हो जाती है। इसलिए अब हम व्यक्ति नहीं हैं जो सोचे कि मेरे को जितना पुरुषार्थ करना होगा करूंगा, नहीं। अब हम भगवान के साथी हैं, अब हम इस ज्ञान यज्ञ की ईंटें हैं। जब हमें सत्य मिला, हम पवित्र योगी बने, हमने पुरुषार्थ शुरू कर दिया, तो हमें कंप्लीट बनना ही है। ये लगन रखो। हमारा अनुभव है, आप सबका भी अनुभव होगा कि बाबा की श्रीमत अनुसार चलने से बाबा की मदद भी मिलती है और हम सहज ही पार हो जाते हैं। तो इसी लक्ष्य उद्देश्य से आप सभी यहाँ आए हैं। इतना चारों ओर कोरोना का भय फैला हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपनी लगन से, अपने उमंग उत्साह से आए हैं, तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। इतनी हिम्मत रख के पहुंचे हैं, तो जरा भी समय व्यर्थ नहीं करना है। अपना हर सेकंड संकल्प श्वास सफल करना है। जानते हो आगे क्या परिस्थितियां होंगी, कोई कुछ कह नहीं सकता है, पर हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि अब संसार विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। परिस्थितियां तो आएगी, इसलिए हम अपनी स्थिति इतनी शक्तिशाली ऊंची बना लें जो हम उन परिस्थितियों में भी अचल अडोल रहे, और जो हमारे आसपास में आत्माएं हैं उनको हम हिम्मत भर सकें, शक्ति भर सकें, उनके अंदर बाबा की याद का इशारा दे सके। तो ये मौका है फाइनल एग्जाम के पहले पूरी तैयारी करने का, है ना? तो हम बाबा की याद में बैठेंगे और कुछ संकल्प दृढ़ कर लेंगे। 2 मिनट के लिए सभी खड़े हो जाइए। कब से आप बैठे हैं तो अपने शरीर को भी ठीक कर लो, हाथ पांव स्ट्रेच कर लो, ऊपर खींचो हाथों को, एक बार, दूसरी बार, खींचो ऊपर, नीचे, और तीसरी बार, यस, पांव को खींचिए, पांव को भी खींचिए, कदम ताल करिए थोड़ा, कदम ताल आता है ना, अपने स्थान पर खड़े खड़े दौड़िए थोड़ा, हाँ, शरीर देखकर दौड़ना, बहुत ज्यादा नहीं दौड़ना, हल्के हल्के जंप लगाइए, धीरे 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 धीरे, हाँ, स्टेप पर है ध्यान से, यस, दो दो की जोड़ी बन जाइए, आमने सामने खड़े हो जाइए, आगे पीछे जोड़ी बनाइए, आसपास देखिए, जिसको जोड़ी ना हो वो हाथ ऊपर करो और एक दो से जोड़ी बनो, बहुत अच्छा, अच्छा, राइट हैंड मिलाइए, एक दो को गुड इवनिंग कहिए, नमस्ते करिए एक दो को, सलाम मालेकम करिए, मालेकम सलाम, सलाम मालेकम, एक दो को ओम शांति कहिए, जरा मास्क उतार कर मुस्कुराइए, पता तो चले कौन किसके सामने खड़े हैं, फिर भले पहन लो, मुस्कुराया, एक दो की पीठ थपथपाइए, वाह बाबा के बच्चे वाह, बहुत अच्छा, एक दो को कान में बताइए, आप यहां क्यों आए हैं, किस लक्ष्य से आए हैं, बताइए एक दो को, कान में आवाज नहीं, अब जोड़ी बदलिए, आगे पीछे जोड़ी बन जाइए, कान में ये तो आपने बताया कि आप किस लक्ष्य से आए, परंतु अब बताइए, अब आप 3 दिन की भट्टी किस लक्ष्य के साथ करेंगे, वो बताइए, अब क्लास सुना, अब आप किस लक्ष्य से भट्टी करेंगे, वो बताइए एक दो को, नजदीक आके बताइए एक दो को, बाबा के सामने हो जाइए सभी, दो अभ्यास खड़े खड़े करेंगे, जिनको तकलीफ हो जब बैठना चाहे बैठ जाना, पर दो अभ्यास खड़े होकर करेंगे। राइट साइड घूम जाइए, पहला संकल्प, स्वयं के आत्मस्वरूप में खो जाइए। मेरा मूल स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मस्वरूप है। मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मैं सत्य हूँ, शुद्ध हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मेरा शुद्ध ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए, साधारण शारीरिक स्वरूप छिप जाए। बाबा के सामने हो जाइए, लेफ्ट साइड घूम जाइए, दूसरा संकल्प पक्का करें, एक बाबा में मगन हो जाए। मेरे सर्व संबंध एक बाबा से है। मेरी सर्व प्राप्तियां एक बाबा से है। मेरे लेन देन का हिसाब बाबा से है। बाबा मेरा सर्वस्व है। न मन से भटकना है, न तन से भटकना है। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। शुक्रिया बाबा। बाबा के सामने हो जाइए। बैठ जाए। तीसरा अभ्यास, इस अंतिम जन्म में जो रोल इस ड्रामा में मुझे मिला है, लौकिक में अलौकिक में, निमित्त बनकर रोल अच्छी रीति प्ले करना है। बाबा मालिक हैं, मैं निमित्त ट्रस्टी हूँ। निमित्त भाव से निर्माण भावना से मुझे लौकिक अलौकिक पारलौकिक कर्तव्य अदा करने हैं। अन्य सर्व आत्माओं का पार्ट साक्षी होकर देखना है। और सर्व के प्रति शुभ भावनाएं रखनी चौथा अभ्यास, शरीर से इस दुनिया में रहते हुए मन की आंख से ज्ञान नेत्र से असली घर परम धाम को याद करें। अब वापस घर जाना है। पवित्र आए थे, पवित्र बनकर वापस जाना है। अकेले आए थे बाबा के साथ वापस जाना है। संगम का जीवन सफल कर पूरे भाग्य को लेकर जाना है। पांचवा अभ्यास, दाता के बच्चे, हम मास्टर दाता हैं। बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, भरपूर किया है। बाबा ने हमें सुख दिया, शांति दी, ज्ञान दिया, शक्ति दी, हमें प्यार किया, खुशियां दी, ये अलौकिक खजाने बांटने हैं। अपने चलन और चेहरे से मुख की वाणी और मन के वाइब्रेशन से रूहानियत पवित्रता अलौकिकता का अनुभव कराना है।
Yeah.